نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج جن صحابی کے حالات زندگی ہم دیکھیں گے وہ ہیں ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں کمنٹ کیا ہے کہ قریش کی اقتصادی ناکہ بندی کر دے گا. یہ وہ جملہ تھا جو انہوں نے بولا تھا جب مسلمان ہوئے اور اسلام کی محبت میں انہوں نے قریش کو مال دینے سے انکار کیا. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی میں ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں. سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا، یعنی دور دور تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی نیت کی. آپ نے بھی کیے. تو عرب اور عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. جن سربراہوں کو خطوط لکھے گئے ان میں ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے. بلا شبہ ثمامہ بن اثال کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ایسے ہر دل عزیز اور باروب سردار تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی، یعنی جن کے حکم کو کوئی ٹالتا نہیں تھا. زمانہ جاہلیت میں ثمامہ رضی اللہ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا. اس کے غرور اور تکبر نے اسے گھنونا جرم کرنے پر تیار کیا. حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے. پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور آپ کے مشن کو ناکام بنا دے. لیکن وہ اپنے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا. ایک دفعہ اسے موقع ملا اور وہ دبے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا. اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے. ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام کا محاصرہ کر کے، یعنی ان کو گھیر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا. یہ بری خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دو. اور اس دل خراش واقعے کو گزرے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اثال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے. اس لیے وہ یمامہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. ان کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کریں اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کریں. تو یہ تھا ثمامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک انٹروڈکشن. چند باتیں کریں گے اس پیراگراف کے ناطے سے. اس کا عنوان لکھ لیتے ہیں پہلے. اس حصے کو ہم جو نام دیں گے وہ کیا ہوگا؟ ثمامہ قبول اسلام سے پہلے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب انسانوں کے دل ابھی اللہ کی بات کی طرف نہیں آئے ہوتے تو ان کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے. پہلی چیز اس میں جو ہم نے سیکھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کی صورت میں مکہ والوں سے جنگ نہ ہونے کا، یعنی 10 سال تک جنگ نہ ہونے کا ایک معاہدہ ہو گیا، تو آپ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھے. اس عمل سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بندہ مومن اور صاحب شعور اور صاحب تقوی شخص جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے نیکیوں کے موقع ڈھونڈ لیتا ہے. جو ہی ایک کام ختم ہوتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے سامنے ایک نیا ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک نیا کام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. وہی کوئی کام کر کے اپنے کام کو اکڑنے اور تکبر کرنے کی بجائے آگے پہنچ جاتے ہیں اور اگلے کام پہ ان کی نظریں ہوتی ہیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے دیکھا कि एक काम खत्म हुआ, अब ये नहीं कहा चलो मुतमईन होके बैठते हैं, अब दूसरे काम में लग रहे हैं। और पहले काम की हैसियत से दूसरा काम ज्यादा मुश्किल है। पहले तो अरब के लोग थे, अपने ही शहर और अपने ही मुल्क के लोग थे, लेकिन अब दावत जिनको दी जा रही है वो ना सिर्फ ये के बेगाने और गैर हैं, बल्कि अपने वक्त के इनफिशियल लोग हैं, इन लीड किस्म के लोग हैं, सरदार हैं। और ऐसे लोगों से बात करने के लिए इंसान को कुछ खास प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत होती है। यहाँ मैं अपनी बहुत ही एक प्यारी, हमारी साथी हैं, स्टूडेंट भी हैं और हमारे काम भी करते हैं, उनका एक जुमला आपके सामने रखूंगी, ताकि आज के दौर में भी ऐसे ही लोग हैं जो अल्लाह के दीन के काम करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो काम करती हैं बहुत दिल से करती हैं, और मतलब मैंने थोड़ी तारीफ की उनकी कि आप बहुत सहूलत हो गई। तो कहने लगी कि उस्ताजा मैंने कभी किसी काम को करने के बाद पीछे पलट के देखा ही नहीं कि मैंने क्या किया और मुझे उस पर कोई फख्र बड़ा है, क्योंकि मैं उसे अगला काम पकड़ लेती हूँ और मुझे फिर फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं पिछला देखूँ। मुझे उनके इस जुमले ने बहुत तसल्ली दी, ढारस दी, और दिल खोल के उनके लिए मैंने दुआएं की कि ऐसे ही लोग काम करते हैं। अगर कोई सिर्फ उंगली पकड़ के चले कि आपने तो पकड़ी नहीं तो हम तो चलेंगे नहीं, आपने तो कहा ही नहीं, आपने तो बताया ही नहीं, नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनसे आप काम करवाते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो आपसे काम करवाते हैं, और ऐसे ही लोग इंशाअल्लाह ताला इंसानियत के लिए उन झरनों की तरह बहते हैं कि जो कभी नहीं रुकते। तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के साथ हम सबको भी मिलवाए और हमें भी ऐसा ही कर दे कि अपनी ज़िंदगी में एक काम के बाद अगले काम में। बस अगर आपका एक दिन टेस्ट होता है तो आप कहते हैं चलो अब मुतमईन हो गए, आज खूब दिल भर के सोएंगे, नहीं कोई और रास्ता ले लीजिए। तबीयत में तब्दीली लानी चाहिए, यानी एक दिन बहुत पढ़ पढ़ के थक गए हैं तो अब ये नहीं कि इम्तिहान हो गए तो अब फिर आप किताबें पकड़ लें, ऐसा नहीं करें, कोई और काम कर लें, घर साफ कर लें, उस दिन चलें अपने कपड़ों को ठीक कर लें, चलें आप किसी को मिल लें, यानी ज़िंदगी में जमूत नहीं आना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है बंदे मोमिन को कि तू सीमाब है, आप पारे को, लेड जो होता है लेड, उसको हाथ में रखें तो वो हिलता रहता है। अब जरा मैं सोचती हूँ कि अल्लामा इकबाल की अप्रोच कितनी गहरी थी, कितने ही लोगों ने लेड देखा होगा, थर्मामीटर किसके घर में नहीं, लेकिन उन्होंने उसकी हरकत से क्या जोड़ा कि ये है असल बंदा है मोमिन, वसाए खून, कुरान पाक में भी आता है कि गर्दिश में रहते हैं, हिलते रहते हैं, ना खुद आराम से बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, फिर दूसरा खत्म होता है तो तीसरा शुरू होता है। असल बात यही है कि जिंदगी बहुत थोड़ी है, वक्त कम है। तो अल्लाह के नबी सल्लम के इस अमल से हम भी अपने लिए अमल की बात लेंगे कि हमने एक जगह से फारिग हुए तो फिर दूसरी तरफ अपनी नजरें लगानी है। फिर दूसरी चीज़ इसमें आप देखिए कि जो हमने देखी, अल्लाह के नबी सल्लम ने अरब और अजम के बादशाहों को खत लिखे। इसमें आपने ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने कल्चर के लोगों से बात की जाए या चलो अरब के लोग हैं, बल्कि अजम के लोग तो बिल्कुल ही ऑपोजिट कल्चर के लोग थे। इसी बात से पता चलता है कि नबी सल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे और आपका पैगाम दुनिया के हर खित्ते में पहुंचना है, ये असल में एक पहला कदम था, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। उम्मत को एक सबक दिया गया कि तुमने ऐसे लोगों को अल्लाह के पैगाम से दूर नहीं समझना कि जो दुनिया के दूसरे हितों में है, क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच सके, लेकिन बाद में सहाबे कराम के लिए दरवाजे खुल गए और अबू बकर सिद्दीक के 2 साल के बाद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के 10 साल में अरब और अजम के अंदर इस्लाम के झंडे गड़ गए। तो इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा लीडर का कोई एक छोटा सा लिया हुआ स्टेप जो है वो बाद में काम करने के रास्ते खोल देता है, गोया कि एक आपने इस काम को हलाल कर दिया, हिल्लत थी इस काम की कि अल्लाह का पैगाम मशरिक मगरिब हर जगह पहुँचेगा। और जिनको तड़प होती है फिर वो ये नहीं देखते कि किसके लिए क्या आसानी है, वो दूसरी जगह भी नज़र रखते हैं। मुझे इतनी अच्छा लगा किसी की बात सुन के कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि जैसे क्लासेस होती हैं और सब जगह से आते हैं और हम सब इस चीज़ में बहुत ही ब्लेस्ड हैं, जितना अल्लाह ताला का हम शुक्र करें उतना ही कम है। और वो क्या कि यहाँ बहुत सहूलतें हैं, अल्लाह ने चाहा तो कंप्यूटर्स भी अच्छे हैं, इंटरनेट भी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसमें अब हम देखेंगे सुमामा के बारे में। पहले तो मैं चाहूँगी कि इनका प्रोनाउंसिएशन सही रखिएगा, इसमें 2 सा आ रही है, सा सा कहाँ से निकलती है, सुमामा नहीं कहना इसको, ये सुमामा बिन असाल नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, सुमामा बिन असाल, सॉफ्ट टिप ऑफ टंग जो है वो रूट ऑफ दी टीच जाएगी। बहरहाल अब हम तजवीद नहीं कर रहे, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक रखिएगा, सुमामा बिन असाल, बड़ा सॉफ्टली निकलता है ये लफ्ज़। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये यमामा से थे, लफ्ज़ यमामा सुनते ही शायद आपके जहनों में आता है कि नहीं आता, लेकिन मेरे जहन में मुसैलमा कसाब का लफ्ज आता है। उस वक्त की एक बहुत एडवांस और एक बहुत ऐसी रियासत कह लें आप, कि जहाँ डंका बजता था, वीट इनके पास था, जमीनें इनकी हरियाली थी, पूरे अरब के अंदर ये जो थे अपना ग्रेन्स भेजते थे, यानी अरब में खुद तो कुछ नहीं उगता था, तो गंदम, चावल, चना, जो कुछ भी हो सकता था वो वहाँ था। तो अब जब इनको अल्लाह के नबी सल्लम ने खत भेजा, तो इससे तो एक नबी सल्लम की मामला फहमी भी समझ आती है। लेकिन आप देखिए कि जब इंसान की आंखों पे पट्टी बनती है ना कुफर की, तो अल्लाह के नबी सल्लम के खत को उन्होंने हकारत से देखा। मैं सोच रही थी अल्लाह के नबी सल्लम के मुबारक खत को इस शख्स ने हकारत से देखा। आज अल्लाह के नबी सल्लम का अगर कोई नुस्खा मिले तो उसको बड़ी बड़ी म्यूजियम्स में रखा जाता है, केसेस में रखा जाता है, मुतबरिक चीज समझते हुए। लेकिन क्या चीज थी इसके दिल में कि इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हद हकीर लगा? और वो क्या थी? अपनी जात की बड़ाई। सात चीजें जो इंसान को हक की कबूलियत के रास्ते से रोक लेती है ना, उनमें एक चीज का नाम है उजुब। उजुब क्या होता है? खुद को बड़ा समझना, और उसका नतीजा अल्टीमेटली ये होता है कि आप दूसरे को छोटा समझने लगते हैं। और उजुब ने अल्लाह के नबी सल्लम के खत की कदर मालूम ना होने दी। फिर आप देखिए कि उसने कत्ल की कोशिश भी की, लेकिन चचा ने उसका हाथ रोक लिया। मैं इस जुमले को पढ़ते हुए दिल चाह रहा था कि आपसे कहूंगी कि आप इसको हाईलाइट कर लें। चचा ने उसका हाथ रोक लिया। अगर उस वक्त चचा हाथ ना रोकता, तो ये शख्स अपने उस गलत अजायम के अंदर कामयाब हो जाता। बज़ाहर उस वक़्त चचा का हाथ रोकना इसको भी नहीं मालूम था, और उनको भी नहीं मालूम होगा कि बाद में ये कितनी बड़ी खैर होगी। तो इस तरह बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में किसी बुराई को हाथ से रोक देना या उसके आगे बंद बांध देना इतनी बड़ी नेकी बाद में बन जाती है कि जिसका इंसान ने तसव्वुर नहीं किया होता। फिर दूसरी चीज़ आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं किया, लेकिन चैन से नहीं बैठा। अंदर आग थी ना लगी हुई, ग्रज था, तो सहाबे कराम को कत्ल कर दिया। और यही थी वो कत्ल की कोशिश जिसकी वजह से ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैद में आया। अब बज़ाहर एक बहुत बुरा फेल है, कितना शर फैला होगा ना, कितनी मुश्किल से लोगों ने ये चीज़ बर्दाश्त की होगी कि इतने सहाबे कराम कत्ल हो गए। लेकिन गौर से सुनिएगा इस बात को कि सहाबे कराम कत्ल हुए, इसने कत्ल किया, इस वजह से ये इश्तिहारी मुजरिम करार दिया। अल्लाह के नबी ने लोगों को कहा कि अच्छा, जहां भी वो मिला उसको पकड़ लो। फिर वो मिला और पकड़ा गया, और वही चीज़ उसके इस्लाम की वजह बनी। तो क्या पता चला? युखरिजुल हय्य मिनल मय्य, अल्लाह खैर में से शर निकालता है, शर में से खैर निकालता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग अपने अंदर गिल्ट रखते हैं, और वो कह के हम कोई बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ी खता कर चुके हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को इस वाक्य की रोशनी में एक खुशखबरी देना चाहूंगी कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा जुर्म होता ही इसलिए है कि अल्लाह ताला आपको उसके बाद बहुत बड़ा कोई अच्छा काम करवाना चाहता है आपसे। तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से कत्ल हो गया, मुक्का मारा, वो किप्ती मर गया, और उसी वजह से फिरौन के खौफ से वहां से निकले और मदियन पहुंच गए। एक नए बाब शुरू हो गया उनकी ज़िंदगी का। तो लिहाजा अल्लाह ताला के फैसलों को समझने की कोशिश करनी है। कोई बात बुरी हो जाए तो उसके ऊपर एकदम दिल हारने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर से खैर का पहलू ढूंढा जाए। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक और चीज़ जो मैं पढ़ रही थी और मेरे जहन में एक मुहावरा आ गया, चूंकि इन्होंने लिखा भी ऐसे ही है कि अभी कत्ल की बात हुई है सहाबा को, और अब तवाफ़े काबा के लिए चला गया। मैं इसको पढ़ रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। एक मुहावरा इसके लिए तो नहीं कह रही, लेकिन एक अमूमी बात है ना, बाज़ दफ़ा इंसान इनफरादी तौर पे बहुत गुनाह भी करता है, लेकिन इबादत करने के लिए फिर भी तैयार रहता है। यानी ये अमल है एक, कि इबादत करना एक और चीज़ है और मामलात और चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ देखिए कि तवाफ़े काबा करें और बैतुल्ला में रखे हुए बुतों के नाम पर जानवर ज़बह करें। ये एक और अमेजिश है, जा काबा में रहा है और बुतों के नाम पे जानवर ज़बह करना। वही कहते हैं ना कि बुतों से मोहब्बत मेरी, काबे से आशनाई भी है। कुछ ऐसी ही कैफियत आज भी हर उस मुसलमान की हो सकती है जो दिल में कई शिर्क और कई ऐसी चीज़ों को पैदा किए हुए साथ ही खाना काबा में जाते हैं। किसी की बात के वो, यानी किसी बुजुर्ग के साथ इतनी अटैच थी कि उनके बुजुर्ग ने उनको उम्रे या हज पे जाने के वक्त जो नसीहत की कि वहां अगर किसी लम्हे भी तुम्हें मुश्किल पेश आई तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। और फिर आप देखिए जैसा गुमान होता है वैसे होने लगता है। आके जो बात उन्होंने सुनाई कि मैं वहां तवाफ में फंस गई, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बोसा ले लूं, हिजरे अस्वद का जगह नहीं थी, इतना रश था कि मैं जा नहीं सकती थी, एकदम मुझे वो अपने बुजुर्ग की बात याद आई कि उन्होंने कहा था मुझे मदद के लिए बुलाना, तो मैंने वहीं खड़े खड़े ऐसे ही कहा कि अच्छा अगर आप वाकई मदद कर सकते हैं तो आज बोसा दिला दें। यकीन करें, कहती हैं कि वहां खड़े खड़े ऐसा हुआ कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, वो तो वैसे ही वहां पड़ते ही हैं धक्के, और शिर्क भी एक धक्का ही होता है देखा जाए तो, अल्लाह के दर से उठा के गैरों पे लगाता है। कहती है, ऐसे हुआ कि मुझे एकदम किसी ने धक्का दिया और मैं लोगों को चीरती हुई आगे हजरत अस्वद के पास चली गई और मैंने वहां बोसा ले लिया, तो मुझे लगता है कि ये बाबा जी ने कोई मदद भेजी थी। अब वो बड़ी अच्छी खात, अल्लाह ना करे कोई मुशरिक नहीं, लेकिन ना मालूम होने की बातें है ना, यानी जब इंसान को समझ नहीं आती, दिल में भी कुछ और होता है, बाहर भी कुछ और होता है, तो वो ऐसे ही काम करता है। तो अल्लाह ताला उनको भी और हम सबको भी माफ़ करे अगर ये उनकी ऐसी खता थी या जो उनको खुद भी नहीं पता, तो अब तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने माफ़ भी कर दी होगी। लेकिन बात करने की है कि जहालत, लाइल्मी कितना बड़ा गुरा है कि बाद में शिर्क तक इंसान करता है, और वो सुनने वाले भी बड़े आराम से सुन रहे थे और बड़े वाह वाह कर रहे थे कि अच्छा, बल्कि कई तो फिर ये भी सोचने लगते हैं ना हमें भी दे देना उन बाबा जी का नाम, कोई हमें मुश्किल आई तो हम भी बुलाएंगे। तो वही बात है कि इंसान जैसा गुमान करता है अल्लाह ताला उसके साथ ऐसे ही करते हैं। आगे देखते हैं, जुनाबे सुमामा रदी अल्लाह अनहो मदीना मुनव्वरा के करीब अभी रास्ते ही में थे कि इनके साथ अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जो इनके वहमो गुमान में भी ना था। हुआ ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरतीब दिया हुआ मुजाहिदीन इस्लाम का एक ग्रुप मदीना मुनव्वरा की निगरानी पर मामूर था, यानी आपने हिफाजत के लिए उनको वहाँ मुकर्रर किया हुआ था, ऐसा ना हो कि कोई मदीना मुनव्वरा पर रात के वक्त अचानक हमला कर दे। मुजाहिदीन का ये ग्रुप गश्त कर रहा था, यानी राउंड ले रहा था, कि उन्होंने रास्ते में जाते हुए जनाब सुमामा रदी अल्लाहु अन्हो को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन्हें मालूम न था कि ये कौन है। वो इन्हें पकड़ कर मदीना ले आए और मस्जिद नबवी के एक सतून के साथ बांध दिया। मुजाहिदीन ने सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम कैदी को देख लें और इसके मुतल्लिक जो हुक्म फरमाएं इसकी तामील की जाए। नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, आपने देखा कि सुमामा बिन असाल रदी अल्लाहु अन्हो मस्जिद के एक सतून के साथ बंधा हुआ है। इसे इस हालत में देखकर आपने फरमाया, क्या जानते हो कि तुमने किसे गिरफ्तार किया? सबने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो इल्म नहीं। आपने इरशाद फरमाया, ये तो सुमामा बिन असाल है, अब इसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए और फरमाया, घर में जो खाना है वो सुमामा बिन असाल के लिए भेज दिया जाए। फिर आपने हुक्म दिया कि मेरी ऊँटनी का दूध सुबह शाम इसे पिलाया जाए। आपके हुक्म की फौरन तामील की गई। फिर नबी अलैहिस्सलाम सुमामा बिन असाल की तरफ मुतवज्जे हुए ताकि इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दें। आपने बड़े ही शफकत वाले अंदाज में पूछा, सुमामा क्या राय है? उन्होंने जवाब दिया, बेहतर है अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो यकीनन एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसने आपके सहाबाए कराम का खून बहाया। अगर मुआफ़ फरमा दें तो एक कदरदान पर मेहरबानी होगी, और अगर माल चाहिए तो जिस कदर फरमाएं माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और इन्हें 2 दिन तक इसी हालत में रहने दिया, लेकिन खाना पानी और दूध बाकायदगी से इन्हें मिलता रहा। फिर आपने पूछा, सुमामा क्या राय है? उन्होंने कहा, बात तो वही है जो पहले अर्ज कर चुका हूँ, अगर आप मेहरबानी फरमा दें तो एक कदरदान पर मेहरबानी करेंगे, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसने आपके साथियों का खून बहाया, और अगर माल चाहिए तो आपकी मंशा यानी मर्जी के मुताबिक या जितना आप चाहें माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब भी उसे उसी हालत में रहने दिया और तीसरे दिन तशरीफ लाए और दरियाफ्त फरमाया, सुमामा अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, मेरी राय तो वही है जो पहले अर्ज कर चुका हूँ, अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो एक कदरदान पर मेहरबानी करेंगे, और अगर कत्ल करेंगे तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसकी गर्दन पर खून है यानी जिसने कत्ल किया हुआ दूसरों को, और अगर माल चाहते हैं तो आपकी मर्जी के मुताबिक माल दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसे आज़ाद कर दो। जनाब सुमामा रदी अल्लाहु अन्हु आज़ाद होने के बाद मस्जिद नबवी से निकलकर एक तरफ चल दिए। मदीना मुनव्वरा की एक जानेब बकी के नज़दीक, यानी जो कब्रिस्तान है बकी का, उसके करीब एक नखलिस्तान था। वहाँ एक मुकाम पर पानी भी जमा था। अपनी ऊँटनी वहाँ बिठाकर खूब अच्छी तरह गुसल किया और वापस मस्जिद नबवी में आकर सब लोगों के सामने ब आवाज़ बुलंद कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। बाद अज़ां मोहब्बत भरे अंदाज में यूं गोया हुए, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, इस्लाम कबूल करने से पहले रूए ज़मीन पर मुझे आपके चेहरे से ज़्यादा कोई चेहरा बुरा न लगता था, लेकिन आज मेरे लिए कायनात में तमाम चेहरों से महबूब तरीन चेहरा आप ही का है। खुदा की कसम, आज से पहले आपका पेश करदा दीन मुझे बहुत बुरा मालूम होता था, अब मेरे लिए तमाम दीनों से ज़्यादा महबूब दीन आप ही का है। खुदा की कसम, आज से पहले आपका ये शहर दुनिया के तमाम शहरों से ज़्यादा बुरा मालूम होता था, और आज से मुझे तमाम शहरों से ज़्यादा महबूब दिखाई देता है। फिर इसके बाद दर्द भरे लहजे में अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैंने आपके सहाबे कराम का बेदरे खून बहाया, भला मेरे इस जुर्म का मदावा कैसे होगा, यानी इसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा। ये सुनकर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुमामा आप घबराइए नहीं, इस्लाम पहले सब गुनाहों को मिटा देता है, और आपने इस खैर व बरकत की बिशारत दी जो अल्लाह सुबहानहू व ताला ने इस्लाम कबूल करने की वजह से आपके नसीब में लिख दी। ये सुनकर जनाब सुमामा का चेहरा खुशी से चमकने लगा और यूं कहने लगे, खुदा की कसम, मैंने अपने ज़माने जाहिलियत में जिस कदर मुसलमानों को कत्ल किया है, इससे दो गुना ज़्यादा मुशरिकीन को तहे तेह करूँगा, यानी कत्ल करूँगा। अब मेरी जान, मेरी तलवार और जो कुछ भी मेरे पास है, सब कुछ आपकी और आपके दीन की खिदमत के लिए वक्फ है। फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त हो तो मैं उम्रा अदा कर रहा हूँ। नबी सल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्रा ज़रूर अदा करें, लेकिन इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपने इन्हें उम्रा अदा करने का तरीका भी समझा दिया। तो ये था सुमामा का कबूल इस्लाम। इस पूरे चैप्टर का नाम आप यही लिखेंगे, दिल बदल गया तो नज़र बदल गई। इस हिस्से में कितनी ही बातें हैं जिसको हम देख सकते हैं। पहली बात तो वही कि जब मदीना के करीब थे और इनको नहीं मालूम था कि मैं किसी की निगरानी में हूँ, लेकिन सहाबे कराम ने इनको पकड़ लिया और मस्जिद नबवी में ला के कैद कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि उस वक़्त ये मुशरिक थे, लेकिन इसके बावजूद सहाबे कराम ने इनको मस्जिद नबवी में बांधा। तो इससे क्या पता चलता है कि ज़रूरत के वक्त या कोई ऐसी अगर ख़ास वजह होगी तो नॉन मुस्लिम जो है वो मस्जिद में जा सकता है। इस पे कोई बहुत ज़्यादा एहतजाज करना या इस पे शिद्दत बरतने की ज़रूरत नहीं, और एक से ज़्यादा मौाक़े पे ये चीज़ हमें मिलती है। फिर दूसरी चीज़ इससे सहाबे कराम की इताअत और फरमाबरदारी दिखती है कि खुद ही उसके बारे में फ़ैसला नहीं सादिर कर दिया, कत्ल कर दें, मार दें, कुछ करें, बल्कि नबी सल्लम पे डाल दिया। एक अच्छी लीडरशिप दिखती है इधर कि कोई कदम उठाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का या आपके मशवरे का इंतज़ार किया। फिर उसके बाद नबी सल्लम का मामला देखिए, 3 बार आपने उसके सामने मोहब्बत से इस्लाम पेश किया, लेकिन आप देखिए कि ना इसमें कोई सख्ती थी ना ग्रज था, बल्कि क्या कहते हैं, तुम्हारी क्या राय है, यानी कितने खूबसूरत लफ्ज़ है ना। आपने देखा कि कोई ऐसे लफ्ज़ों में तबलीग नहीं की हुई कि मुसलमान हो जाओ, ऐसे होगे वोगे, यानी एक दफ़ा भी आपने इन पूरी 3 मौके पे ये नहीं सुना कि आपने कहो कि सुमामा मुसलमान हो जाओ, नहीं। लेकिन आप ये जो करते थे, और साथ आप देखिए कि आपने उनके लिए खाना रखा, दूध भेजा, ये उस वक़्त की समझें कि एक बड़ी कीमती चीज़ें थी जो उनके सामने रखी गई। फिर आपने अपने साथियों को ये जो बात कही कि देखो इनके अच्छी खातिर करना क्योंकि ये अपनी कौम का सरदार है, एक हदीस से भी ये मजमून मिलता है कि लोगों को उनकी मर्तबे यानी उनसिलु नास मनासिलहुम, के लोगों की जो इज्जत है या जो उनका मर्तबा है उसके मुताबिक उनसे पेश आओ। ये अपनी कौम का बड़ा था तो नबी सल्लम ने उनके लिए अच्छे तरीके से मामला किया। ये है हुस्न अखलाक। अब ये जो 3 दिन तक ये वहाँ खड़े देखते रहे, एक तो नबी सल्लम का हुस्न सलूक, फिर दूसरा मस्जिद नबी में होने वाली सरगर्मियाँ, 5 वक्त में मुसलमानों को नमाजों की तरफ भागते हुए आते देखना, मुसलमानों के मामलात फैसले तस्वीये होते देखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबे कराम की मोहब्बत को देखना और आपकी इताअत और फरमा बरदारी को देखना, ये थी वो चीज़ें कि जिसने सुमामा के दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत बिठाई। और ये इसकी बेहतरीन मिसाल है कि इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला। अल्लाह के नबी सल्लम ने लोगों को कत्ल नहीं करवाया, घायल नहीं किया, बल्कि अपनी मोहब्बतों से उनके दिल में जगह बना दी। कल तक कैद था लेकिन दिल उसका आज़ाद था। जब नबी सल्लम ने आज़ाद किया तो दिल का कैदी बन गया। जब रस्सियाँ टूटी तो वापस आके कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही होता है, जब सच्चा ईमान दिल में आता है ना तो फिर इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि सुमामा का ये कहना कि अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो यकीनन एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसने आपके सहाबा का खून बहाया, ये गिल्टी कॉन्शियस होता है। जो गुनाह करता है ना, गलत काम करता है, उसको पता होता है मैं नाहक खून बहा रहा हूँ। वो दूसरों को ना कहे ना बताए, लेकिन जब उस पर कोई आफत आती है या मुश्किल पड़ती है तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरे ही किसी गुनाह का बदला है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ जहाँ जो हमें नज़र आती है वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र लोगों के माल पे नहीं थी। कितना बेहतरीन मौका था माल लेने का, कैदी छुड़ाने का। उस वक़्त भी फ़दिया जो होता था, आपको मालूम है 100 ऊँटों की कीमत भी हो सकती है और इससे कम या ज़्यादा भी, और आप जो मांगते वो दे देता। बादशाह था, अपने मुल्क का सरदार था, सदर था, प्रेसिडेंट था, आप कुछ भी कह लें आज के दौर के हिसाब से, जो मांगते मिल जाता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की शान बेनियाजी देखिए कि मांगा नहीं। जब उसको छोड़ा तो उस वक्त आपको तो ये पता ही नहीं था ये मुसलमान हो जाएगा, लेकिन आपके उस छोड़ने ने उसके दिल में आपकी जगह बना दी। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोगों के माल या उनकी चीज़ों पे नज़र रखने की बजाय या उनसे इमदाद लेने के लिए उनके आगे झुकें, इसकी बजाय अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बेनियाज करते हुए अगर गैर मुस्लिमों के साथ मामला करें तो हमारे लिए ज़्यादा इज्जत होगी और उनके दिलों में हमारी जगह ज़्यादा बनेगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि इन बातों से ये ज़रूर पता चलता है कि सुमामा ने बेशक कत्ल किया था सहाबे कराम को, कुफर था लेकिन दिल का अच्छा था। ये जो बात वो कहते हैं ना कि अगर आप मुआफ़ कर दें तो एक कदरदान पर मेहरबानी करेंगे, ये बताता है कि उसका दिल अच्छा था। और अल्लाह सुबहाना तआला की एक सुन्नत है, और वो क्या कि जब कोई दिल का अच्छा होता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर हिदायत देता है, ज़रूर ऐसे रास्ते उसकी तरफ खोल देता है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को बदल ले। और आप देखिए कि मस्जिद नबी में आके जब इसने ये कलमा पढ़ा होगा तो उस वक़्त क्या महसूस नहीं हुआ होगा, क्या उस वक़्त कैफियत होगी लोगों की कि लोग किस तरीके से यानी खुश ना हुए होंगे। आज हमारे अखलाक ऐसे क्यों नहीं रहे? आज हम तो अपनों को देख नहीं सकते, आज हम उनको देख के समझते हैं कि ये चूंकि हमारे लोग नहीं, अब इनको पकड़ के और फेंक दो और इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लम का ज़र्फ़ कितना बुलंद था और आपके आला अखलाक की वजह से ये मामला हुआ। फिर ये जो इनके लफ्ज़ हैं सुमामा के, ये आज भी बहुत जगह कोट होते हैं कि खुदा की कसम आज से पहले आपका पेश करदा दीन मुझे बहुत बुरा लगता था। ये जुमला उसने क्यों बोला? क्योंकि दिल ख़राब था, लेकिन जो ही इस्लाम दिल में आया, दिल खुला, वही दीन अच्छा लगने लगा। आज भी जब हम गैर मुस्लिमों की ज़ुबान से इस्लाम के खिलाफ गलत बातें सुनते हैं, बाज़ दफ़ा उस प्रोपेगंडे की वजह से हम या हमारी नस्लें इस डाउट का शिकार हो जाती हैं कि शायद फिर इस्लाम में कोई ख़राबी है, तो ये वाक़या बेहतरीन है उस मौके पे बयान करने के लिए कि देखिए ख़राबी इस्लाम में नहीं थी, ख़राबी उसके अंदर थी। जब अंदर की बीमारी दूर हुई सब ठीक हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे खाना आप किसी को देते हैं, खाना बिल्कुल ठीक होता है लेकिन एक शख्स खाता है तो बीमार हो जाता है, आप परेशान हो जाएंगे क्यों हो गया, इसने हुआ खाने में कुछ था। फिर आप कहते हैं नहीं भाई देखो दूसरों ने भी खाया उनको तो कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर खराबी है। जब उसकी खराबी दूर की जाती है तो खाना ठीक होता है। जिंदगी में हमेशा ये असूल बनाइए कि बास दफा कोई चीज़ ऐसी लगती है देखने में हमें कि बजाहर इस चीज़ की वजह से ये खराबी हुई, लेकिन उसका कसूर नहीं होता, अंदर खराबी होती है। आज इस्लाम के ऊपर जितने इल्ज़ाम लग रहे हैं ना, उसकी वजह इस्लाम नहीं है, उसकी वजह यह है कि देखने वालों की नज़र टेढ़ी है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई गाड़ी के अंदर बैठता है ना, आप तसव्वुर में करें, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आप गाड़ी के अंदर हैं, आप अपनी हेडलाइट्स खोलते हैं ना, आप लाइट खोलते हैं क्यों, कि आपको रास्ता दिखे, तभी आप गाड़ी चलाएंगे ना रात के वक्त। लेकिन वही हेडलाइट्स जो आपको रास्ता दिखा रही हैं, वो ऑपोजिट साइड से आने वाली दूसरी गाड़ी वाले की आंखों को चुंधिया रही हैं। फर्क किसका है? आप इस गाड़ी के अंदर हैं, वो गाड़ी से बाहर है। इस्लाम के साथ भी ये मामला, जब आप इस्लाम की गाड़ी के अंदर आ जाते हैं ना, तो इसके तरीके, जाब्ते, असूल, कानून आपको रास्ता दिखाते हैं। इन्नल हुदा हुवल खुदा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह की रहनुमाई है। लेकिन जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन से इस्लाम को देखते हैं, तो वो चीज़ें आपको फिर दहशतनाक भी लगती हैं, वो आपको इंसानियत सोच भी लगती हैं। तो असल हमारा टारगेट फिर आज के दौर में क्या होना चाहिए, यहाँ दावा का एक बड़ा प्यारा नुक्ता है। हम अमूमन जब दावा की तरफ निकलते हैं, तो हम जोर लगाते हैं इन चीज़ों पे कि अपने इस्लाम को क्लेरिफाई करें, नहीं ऐसा नहीं, देखें औरत पे ओप्रेस नहीं, औरत आधी गवाही नहीं, पूरी नहीं, या इस तरह की बातें करते हैं ना। इस्लाम इज दिस, नहीं, कीप इट जहाँ है वहाँ रहे, उसके दिल को बदले। कभी ऐसे अनरेलेवेंट सवालों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए जो नॉन मुस्लिम्स की तरफ से आपके ऊपर आए, और जिसका मकसद सिर्फ यही हो कि वो सुनी सुनाई चंद बातें। और हकीकत है, आज नॉन मुस्लिम्स के पास जो इस्लाम है, वो मीडिया का फैलाया हुआ इस्लाम है। हमारे दाई तो वहाँ पहुँचे ही नहीं, हमारे मुबल्लिग तो वहाँ पहुँचे ही नहीं, हमारे प्रीचिस नहीं पहुँचे, उन्होंने मीडिया से इस्लाम सीखा। जो उसने बोल दिया वो उन्होंने मान लिया। तो अपना इस्लाम इस तरह पेश करना कि माजरत ख्वाहाना अंदाज हो, या इंसान ह्यूमिलिएटेड हो के कहे नहीं सच्ची ऐसे नहीं, सच्ची हम ऐसे नहीं, यानी हम थोड़ा थोड़ा इस्लाम उतार के अपनी ज़िंदगी से ये पेश करते हैं कि चलो नहीं ठीक है तुम आ जाओ, नहीं, आप अपने इस्लाम पे कायम रहिए, अगले का दिल बदले। सहाबे कराम या नबी सल्लम की ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आई थी लोगों की ज़िंदगी में आपकी वजह से, उसकी वजह ही क्या थी? क्या आपने इस्लाम को नहीं बदला था? अपने रवैयों से लोगों के दिल जीते थे। आज भी इसी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप देखिए कि उम्रा करने जा रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लम से इजाज़त ली, और आपने उनको उम्रा अदा करने का तरीका सिखाया। इससे क्या पता चला कि जब कोई मुसलमान होता है, तो फिर उसकी बाद में रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें कि अब तुम मुसलमान हो गए हो। आज हमारे यहाँ अमूमन जब लोग मुसलमान होते हैं, तो खातर ख्वाह किस्म की कोशिशें नहीं देखी जाती कि जो अब उनको न्यू मुस्लिम्स को अच्छा दीन सिखाएं। तो आपने उनको सिखाया, और आप देखिएगा कि इनको फिर अल्लाह ताला ने एक एजाज़ भी दिया। आगे देखते हैं। जनाब सुमामा रदी अल्लाह अन्हो इजाज़त मिलने के बाद उमरा अदा करने के लिए रवाना हो गए। मक्का मुअज्जमा पहुँच कर आपने बा आवाज़ बुलंद ये कलेमात कहने शुरू कर दिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ इलाही, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। सब तारीफें और नेमतें तेरी हैं, और हुकूमत भी तेरी, और तेरा कोई शरीक नहीं। हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाहु अन्हो वो पहले मुसलमान हैं जो मक्का मुअज़्ज़मा में बा आवाज़ बुलंद तलबिया कहते हुए दाखिल हुए। तलबिया किसको कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को। इसका उन्वान क्या है? इस्लाम लाने के बाद पहला एजाज जो इनको मिला। आप देखेंगे कि इनको और भी अल्लाह ताला ने एजाजात दिए, तो इनको एजाज दिए। इस हिस्से से हमने क्या सीखा? जब दिल बदला, घर से निकले थे, इनकी दिली तमन्ना थी कि तवाफे काबा करें और बैतुल्ला में रखे गए बुतों के नाम पर जानवर जिबा करें। घर से ये नियत लेके निकले थे, लेकिन जब हरम में दाखिल हुए तो नियत क्या, कौल भी बदल गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या पता चला इससे? सिर्फ दिल बदला, सब कुछ बदल गया। और ये जो बात है कि मक्का में पहले ये शख्स थे जो तलबिया कहते हुए दाखिल हुए, तो इसकी वजह क्या थी? कि ये बादशाह थे। खाते पीते थे, सरदार थे। आम लोग उस दौर में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे इस चीज़ का कि वो वहां जाके ऊंची आवाज में ये कलमा पढ़ें, क्योंकि वो डरते थे। तो इससे क्या बात पता चली कि जब कोई साहिब इख्तदार, जब कोई बड़ा असर और रसूख वाला शख्स इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, तो वो अपने साथ बहुत सारों को ले। कुछ लोग होते हैं, लोग उनको आंखें बंद करके फॉलो करते हैं। वो बुराई के दाई बन जाएं तो बुराई फैलने लगती है। अगर ऐसे लोग खैर की तरफ आ जाएं तो फिर लोग खैर की तरफ भी आने लगते हैं। तो हदफ क्या होना चाहिए कि वहां काम किया जाए जहां से एक शख्स नहीं आए, बल्कि एक पूरी सोच रखने वाले लोग आ जाएं। कुरैश ने ऊंची आवाज में जब ये कलेमात सुने तो इनके गुस्से की कोई इंतहा न रही। सब लोग तलवारें हाथों में लिए घरों से बाहर निकल आए, ताकि इस शख्स को गिरफ्तार कर सकें जिसने मक्का में आकर इनके अकायद के खिलाफ बबांगे दुखल, यानी बुलंद आवाज में जुर्रत के साथ कलेमात कहने की जुर्रत की। जब कौम सुमामा रदी अल्लाहु अन्हो के पास पहुंची, तो आपने एक बार फिर ऊंची आवाज से तलबिया के कलेमात कहने शुरू कर दिए, और बड़ी शान शौकत का मुजाहरा करते हुए इनके सामने सीना तान कर खड़े हो गए, यानी पूरे जुरत के साथ और यकीन के साथ खड़े हो गए। कुरैश में से एक नौजवान नेजा लेकर आगे बढ़ा ताकि आप पर हमला आवर हो, लेकिन दूसरों ने इसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अरे तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये तो यमामा का बादशाह सुमामा बिन असाल है। बखुदा अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो इसकी कौम हमारी माली मदद बंद कर देगी और हम भूखों मर जाएंगे। कौम ने ये सुनकर अपनी तलवारें वापस डाल दी और जनाब सुमामा रजी अल्लाह अन्हों से गुफ्तगू करने लगे। कहने लगे, सुमामा तुझे क्या हुआ? आपको तो नहीं कभी किसी ने ये जुमला कहा, तुम्हें क्या हो गया? अच्छी भली थी हैं? क्या तुम बेदीन हो गए हो? क्या तुमने अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है? आपने फरमाया, मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो उम्दा दीन को इख्तियार कर लिया है। और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, अब सरजमीने यमामा में से उस वक्त तक तुम्हारे लिए गंदम का एक दाना भी नहीं आएगा जब तक तुम मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार न कर लोगे। इसका उन्वान क्या है इस हिस्से का? सुमामा की धमकी। ये होती है जुर्रत। जो बड़े कैलेपर का होता है ना, फिर उसके काम भी इसी तरह के होते हैं। आप देखिए कि कुरैश को गुस्सा आया, लेकिन ये डरे नहीं, क्योंकि बैक मजबूत थी, स्ट्रांग थे अपनी जगह पे। फिर आप देखिए कि जब कौम ने ये पहचान लिया कि यमामा का बादशाह है, तो तलवारें नीचे कर ली। इससे क्या पता चला कि दुश्मन काफिर जो हैं वो भी देख के ही हाथ डालते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि किसी पे हाथ डालना हमारे लिए नुकसान का सबब होगा और नुकसान का जरिया बनेगा, तो वो फिर हाथ नहीं डालते। फिर आप देखिए कि एक और चीज़ जो समझ में आई, कौम ने क्या कहा, तुम्हें क्या हो गया? ये है वो जुमला जो हर उसको सुनना पड़ता है जो अल्लाह के दीन की तरफ आता है। कोई अपना ये जुमला शेयर करेगा? हम अमूमन ये जुमले सुन के रोने लगते हैं। जी, ये कह रही हैं कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, और मैं पर्सनली भी जानती हूँ कि बहुत नेक खातून थी हमारे गुमान के मुताबिक, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, तो कह रही हैं कि इन्होंने उनकी कोई इस तरह की रसूमात नहीं की जैसी कि पहले की जाती हैं। तो इनकी फूफी ने फ़ोन किया, कज़न, किसी ने फ़ोन करके इनको कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने फूफी बेगम का कुछ भी नहीं किया। तो बात सही है कि जुमले सुनने पड़ते हैं, और किसी को ये जुमला सुनना पड़ता है जब ये सुने? कह रही हैं अल्लाह करे ऐसा वक्त आए कि हम ये जुमला सुने। चले, अगर कहा है तो फिर तैयार भी रहिएगा। बहरहाल दिल बदलते हैं तो फिर ऐसे बातें तो होती हैं। फिर आपको जुमले का जवाब भी तो मिल गया ना, अगर किसी को कहा तो आपने भी यही कहना है कि मैं बेदीन नहीं हुआ, मैंने तो उम्दा दीन को इख्तियार किया है। अच्छा, ये कौन सा दीन था जिससे फिरने की बात वो लोग कर रहे थे? ये मुआशरे का दीन था, बिरादरी का दीन था, रिवाजी दीन था। हर मुआशरे में ऐसे ही होता है। बाज़ दफ़ा एक दिन तो अल्लाह ताला की तरफ का आया ही होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दीन जो है वो बना के रखते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि फिर उसकी वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा दीन वाले कहलवाते हैं। आगे देखते हैं। सुमामा बिन असाल रदी अल्लाहु अन्हों ने कुरैश के सामने बिल्कुल इसी तरह उमरा अदा किया जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तालीम दी थी। उम्रा अदा करने के बाद अल्लाह की राह में एक जानवर कुर्बान किया और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले यही हुक्म किया कि कुरैश की माली इमदाद बंद कर दी जाए, और आपके हुक्म को पूरा करते हुए कौम ने अहले मक्का की माली इमदाद रोक दी। हजरत सुमामा बिन असाल रदी अल्लाह अन्हों के इसके हुक्म के बाद कुरैश का अरसे हयात तंग होने लगा, यानी उनकी जिंदगी मुश्किल होने लगी। महंगाई बढ़ गई, भूख आम हो गई, मसाइब और मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। यहाँ तक इन्हें इस बात का अंदेशा होने लगा, यानी इस बात का खतरा हुआ कि वो और इनके बच्चे भूख से हलाक हो जाएंगे। इस नाजुक तरीन मौके पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत लिखा जिसमें ये तहरीर थी, हमारा तो ख्याल था कि आप सिला रहमी फरमाएंगे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करेंगे, लेकिन आपने तो कतअ रहमी की एक मिसाल कायम कर दी, हमारे अबाव अजदाद को तहे तहे कर दिया, इशारा है गज़वे बदर में मारे गए लोगों की तरफ, और हमारी औलाद को भूख से मार दिया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सुमामा बिन असाल ने हमारी माली मदद बंद कर दी है, अज़राहे करम इसे हुक्म दें कि वो हमारी इक्तसादी इमदाद बहाल कर दे और खाने पीने की चीज़ें हमें भेजना शुरू कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सुमामा को खत लिखा कि कुरैश की माली मदद बहाल कर दें, तो उन्होंने आपके हुक्म की तामील करते हुए कुरैश की मदद को बहाल कर दिया। अल्लाह अकबर। इस हिस्से का उन्वान क्या होगा? और सुमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदद बहाल कर दी। इस हिस्से में भी अगर आप देखें तो एक चीज़ बहुत वाजे समझ आती है, अपने दिल की मर्जी सामने आती है, लेकिन जूं ही अल्लाह के नबी सल्लम का हुक्म सामने आता है तो फिर दब जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी दुश्मनियाँ या दोस्तियाँ ज़ाती नौयत की नहीं होती थी, किसी के लिए दिल में ज़ाती ग्रज नहीं रखते थे, बल्कि करते क्या थे कि वो जो बात सामने आती थी बस उसी के आगे अपने आप को चला लेते थे। फिर एक और चीज़ इससे जो समझ आती है वो क्या है कि उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से उम्रा किया जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लम ने हुक्म दिया था, यानी फ़ौरन सुन के मानने वाले हो गए। ये नहीं कहा कि अच्छा कुछ अरसा लगेगा सीखने में, या भी हो सकता है कुछ ऐसा ना हो, यानी सुनने के बाद फौरन मान गए। फिर इसके बाद नबी सल्लम की नरम दिली भी देखिए, कितने सख्त लफ्ज़ हैं ना मक्का वालों के। अब देखिए कि सुमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदद बंद की और ये सोचने लगे कि नबी सल्लम ने इनको कहा होगा। ऐसे इल्ज़ाम ज़िंदगी में लगते हैं ना, अक्सर ही लगते हैं, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती वो बात जो लोग आपसे मंसूब कर देते हैं। लोग कोई और काम करते हैं तो लोग सोचेंगे नहीं ये आपने कहा होगा, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं होता। फिर इसके बाद आप देखिए कि उन्होंने कितना कुछ कहा कि आपने तो रिश्तेदारियों को काट दिया, तो ज़रा सोचा जाए कि इन्होंने नबी सल्लम के साथ क्या किया था। हिजरत की रातें जो कत्ल के मंसूबे थे, क्या वो सिला रहमी की बातें थी? सूरह तौबा में आप देखेंगे ना कि किस तरीके से इनके साथ मामला होता है। तो बहरहाल नबी सल्लम की आला जरफी, ये होता है आला इखलाक किल विद काइंडनेस, कि आपने कहा दे दो इनको, अगर आप बदले लेने वाले होते या अपनी धाक बताने वाले होते तो क्या आपके लिए मौका नहीं था इस चीज़ के लिए कि चलो पहले मुसलमान हो जाओ फिर तुम्हें मदद दी जाएगी? नहीं, ला इकराह फिद दीन। इससे ये भी पता चलता है कि किसी की मजबूरियों से फ़ायदा उठा के उसको इस्लाम की दावत नहीं देनी चाहिए, जो दलील से मानेगा वही मानेगा। हज़रत सुमामा बिन असाल रदी अल्लाह अन्हो ज़िंदगी भर अपने दीन के वफ़ादार और नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के साथ किए गए अहदो पैमान पर पाबंद रहे। जब अल्लाह के नबी सल्लम की वफ़ात हुई और आम लोग दीने इलाही से इज्तमाई और इनफरादी तौर पर हटने लगे, इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया और अपनी कौम बनू हुनैफा को अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देने लगा, तो जनाब सुमामा रदी अल्लाहु अन्हो मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में उतर आए, अपनी कौम से कहा, ए बनू हुनैफा, इस अंधेर नगरी से बच जाओ जिसमें कोई नूर की किरण नहीं, बखुदा जिसने मुसैलमा कज़्ज़ाब की दावत को तस्लीम किया ये इसकी इंतहाई बदबख्ती होगी, और जिसने इसकी दावत को तस्लीम न किया वो यकीनन खुशकिस्मत है। और फरमाया, ए बनू हुनैफा तुम बास आ जाओ, मुसैलमा कज़्ज़ाब के शैतानी दाव से बचो, तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा और ना ही इनकी नबूवत में कोई शरीक है। फिर इनके सामने ये कुरानी आयत तिलावत फरमाई, تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. کہ اتارنا ہے کتاب کا اس رب کی طرف سے جو غالب ہے اور علم والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت پکڑ کرنے والا، دولت مند، اس کے سوا کوئی مصیر نہیں. یہ سورت مومن کی پہلی آیتیں ہیں، بالکل ابتدائی آیتیں. پھر کہا کہ اس مقابلے میں مسلمہ قذاب کی اس فضول عبارت کی کیا حیثیت ہے، یا دف دو نکنی ما تنقینا للشراب تمنعینا وللما تقدرینا. کہ اے ٹرانے والے مینڈک، کس قدر تو ٹھہراتا ہے، نہ تو کسی کو پینے سے روکتا ہے نہ ہی پانی کو گتلا کرتا ہے. یہ اس کا کلام تھا جو اس نے اپنے نام سے منسوب کیا ہوا تھا. یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں اور اس طرح کی چیزیں کرتا تھا. تو انہوں نے تقابل کیا کہ دیکھو، ایک طرف اتنا پیارا کلام ہے، غافر ذنبی قابل التوبی، ایک ایک لفظ دل میں جاتا ہے، اور دوسری طرف کیسا کلام ہے. اس کے بعد سمامہ بن اسال نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے، اور مرتدین یعنی جو اسلام سے پھر گئے کے خلاف جہاد اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے. اللہ تعالیٰ سمامہ بن اسال کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنت میں انہیں وہ اکرام اور اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقویٰ سے کیا گیا ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اس حصے کا عنوان آپ لکھ لیجئے، فتنوں کے دور میں ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت. کسی انسان کا پتہ بھی اسی وقت چلتا ہے جب کوئی مشکل ہوتی ہے، دین پہ اسلام پہ مشکل آتی ہے، تو اصل وہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ کون اس میں قائم رہتا ہے اور کون نہیں. اور آپ دیکھیے کہ انسان سب سے ٹکرا لیتا ہے، لیکن اپنی برادری اور اپنی قوم کے سامنے ٹکرانا بہت مشکل چیز ہوتی ہے. جو مسلمہ تھا وہ انہی کی قوم کا بندہ تھا، اور اسی کے پیچھے کتنے لوگ لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت دے، بہترین اخلاق عطا فرمائے، سمجھ دے، حکمت عملی دے، کہ ہم اچھے طریقے سے لوگوں تک اللہ کی بات پیش کریں. اور نہ جانے کتنے لوگوں کے اندر خیر ہے جو ہماری منتظر ہے کہ ہم جا کے وہاں بات کریں اور نکالیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.